प्रेमचंद जी, सादर जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र भाई।
मुना द्वारा आयोजित पूज्य गुरुदेव श्री की कांची स्वामी के उपकार सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम में देश विदेश के कोने कोने से श्रोताजनों की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन है। आज हम जैन न्याय इस विषय पर एक इंटरव्यू के रूप में प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो इस वार्तालाप का समय 35 मिनट का है। जब मैंने पढ़ा कि मोना के इस इंटरव्यू के लिए आपने जैन न्याय जैसा हमने विषय पसंद किया है, तब मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ और मन में अनेक प्रश्न भी खड़े हो गए। ये जैन न्याय के किस चीज का नाम है? चारों अनुयोगों में इसका कहाँ स्थान है? जैन न्याय की विषय वस्तु क्या होगी? जैन न्याय सीखने से क्या लाभ होगा? यह जैन न्याय भी कोई इसका कोई इतिहास है? आदि अनेक प्रश्न होने लगे हैं। तो जैन न्याय के विषय में भारत के अग्रगण्य विद्वानों में आप एक है, इसलिए मुझे बहुत आनंद भी हुआ कि इस विषय पर आपका यह वार्तालाप आपसे होने वाला है। अभी यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से सिल्वर स्प्रिंग एमडी से कोकिलाबेन गड्डा, शिकागो से स्वातिबेन मेहता और मैं भानुषा टोरंटो कनाडा से आपको एक के बाद एक प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैन न्याय का इतिहास क्या है और उसकी आचार्य परंपरा और उन्होंने लिखे हुए शास्त्रों के बारे में आप कृपा करके संक्षिप्त में प्रकाश डालिए।
अच्छी ओम नमः सदेव्या प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषा विकर्या इति वक्षे तेवर लक्षण सिद्ध मनोम नरीसा। जैन न्याय का संक्षिप्त इतिहास ऐसा है बहन जी कि आपको विदित है कि भगवान महावीर स्वामी के कंटेम्परेरी समकालीन महात्मा गौतम बुद्ध हुए हैं और जिनके निमित्त बौद्ध धर्म फैला देश विदेश में। तो आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व कुछ बौद्ध विद्वानों ने, जिनमें नाम आते हैं देवनाथ धर्म कीर्ति ने एवं मीमांसक सांख आदि विद्वानों ने, जिनमें नाम आते कुमारिल भट्ट शंकराचार्य आदि ने जैन दर्शन की बहुत आलोचना की और उसकी आलोचना में अनेक ग्रंथ लिखे, कहने गलत सिद्ध करने का उन्होंने उपक्रम किया। तब तो उसके खंडन में और जिन मत की सच्चाई सिद्ध करने में, मंडन में और सच्ची जिनेन्द्र मत की संस्थापना करने में आचार्य समन्त पत्र समझिए कि ईसवी शताब्दी दूसरी में हो गई और उन्होंने आत्मीमांसा, युक्त अनुशासन, स्वयंभू स्तोत्र आदि ग्रंथों की रचना की। और आत्मीमांसा जैन न्याय का आज वर्तमान में भी आद्य ग्रंथ है, नीव के पत्थर के समान है न्याय ग्रंथों में। और जो वस्तु के अनंत धर्मात्मक स्वभाव की सिद्धि करता है और अरहंत देव के सर्वज्ञत्व की, अरहंत परमात्मा ही सर्वज्ञ है ऐसे अनुमान प्रमाण से सिद्धि करता चला आ रहा है। न्याय की मीमांसा में आचार्य अकलंक देव यानी 7वीं शताब्दी में हो गए, जैन न्याय के प्रस्थापक आचार्य कहे जाते हैं। क्योंकि जब बौद्ध व मीमांसक विद्वानों ने सर्वज्ञ सिद्धि को गलत बताना प्रारंभ कर दिया, तब आचार्य अकलंक देव ने उनका जोरदार तार्किक शैली में जैन न्याय से, जो कि त्रैकालिक सत्य पर आधारित होते हैं जैन न्याय, उन्होंने अपनी कृति अष्टसती जो कि आत्मीमांसा की टीका का नाम है उसमें एवं तत्वार्थ सूत्र की टीका तत्वार्थ राजवार्तिक में बहुत जैन न्याय लिखकर उनके जो पॉइंट थे, बिंदु थे, उनको निराकरण कर दिया और सच्चे जिनमत के 700 सिद्धांतों की स्थापना की। आज हम जो आप हैं वास्तव में जैन न्याय की बदौलत अपने सिद्धांतों पर अड़े हैं। इसके बाद पश्चात आचार्य विद्यानंद स्वामी हुए 8वीं-9वीं शताब्दी में ईसवी की, उन्होंने इस अष्टसती टीका जो कि अकलंक देव स्वामी की थी उस पर अष्टसहस्त्री 8000 श्लोक प्रमाणिक टीका लिखी, बहुत विस्तार से लिखी और सारे जिन मत के वाह जो एकांत मत पोषक मत है और अन्यथा मानते हैं उनका निराकरण किया। आपकी मनसा की टीका ही समझिए अष्ट सहित्री है। आजकल लोग उसको कष्ट सहित बोलते हैं, कठिन है, लेकिन वस्तुता जब उसको रुचि पूर्वक कोई पढ़ता है तो उसको सब मर्म ख्याल में आने लगता है। आचार्य विद्यानंद जी ने स्वयं तत्वार्थ सूक्त भारतीय तत्वार्थ सूक्त की टीका लिखी और उसमें भी जैन न्याय को अत्यधिक मजबूती प्रदान कर अमृत प्रदान कर दिया। इसी प्रकार आचार्य एक माणिक नंदी हुए, वो समझिए कि 10वीं शताब्दी में, और उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की तरह जैन न्याय को सूत्रों में निबद्ध कर दिया। जैसे हम तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरितार्थ, मोक्ष मार्ग आदि पढ़ते हैं, ऐसे जैन न्याय को सरल सूत्रों में परीक्षामुख नामक न्याय ग्रंथ की रचना कर अद्भुत कार्य कर दिया और जैन न्याय को एक स्थायित्व प्रदान कर दिया। तो उन सूत्रों को हम आप पढ़ करके भी वस्तु के स्वरूप को यथार्थ बने जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आचार्य इसके बाद लघु अनंत वीर नाम के आचार्य हुए, उन्होंने इस परीक्षामुख ग्रंथ पर 11वीं 12वीं शताब्दी में माने जाते हुए प्रमेय रत्नमाला लिखी, इसी परीक्षामुख की टीका का नाम, और उसके पश्चात धर्मभूषण यति ने आचार्य प्रभाचंद, इनके बाद आचार्य प्रभाचंद हुए, उन्होंने उस 10वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी में प्रमेय कमल मार्तंड एक बहुत विस्तृत टीका लिखी इसी परीक्षामुख ग्रंथ के ऊपर। पश्चात धर्मभूषण यति हो गए और वो हुए हैं 13वीं शताब्दी में, और 13वीं शताब्दी के बाद कहो तो 14वीं शताब्दी की शुरू हो गई। उन्होंने एक न्यायदीप का नाम के ग्रंथ की रचना की जिसमें हमारे लिए कहना चाहिए न्याय किसे कहते हैं, पदार्थों को जानने को उपाय क्या है, इस प्रकार के सारे सूत्रों रूप में एक कहना चाहिए गद्य संस्कृत में लिख करके एक अद्भुत ग्रंथ रच दिया और उसका नाम है न्यायदीप का। और इन प्रणीत तो अपने जो तत्वार्थ हैं उनकी श्रद्धा को ये मजबूती प्रदान कर अपने को श्रद्धान में अटल अटल बना देती है। अब वर्तमान काल में भी एक डॉक्टर से दिगंबर जैन मुनि बन गए, मुनिवर वीर सागर जी सोलापुर में हुए, इंजीनियर डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि वर्तमान में जो सोनगढ़ वाले संत पूज्य गुरुदेव श्री जो इतना आध्यात्मिक क्रांति ला करके तत्व की प्रूपा कर रहे हैं, तो वो भी उनसे प्रभावित होकर के और उन्होंने ये जैन न्याय ग्रंथों परीक्षामुख आत्म और न्यायदीप का इनको बहुत विस्तार से पढ़ करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये जैन न्याय मात्र दूसरे अन्य मतों के खंडन के लिए नहीं लिखे गए, ना अपने मंडन के लिए, वो तो स्वयं उनका खंडन अपना मंडन हो जाता है, लेकिन वास्तव में अपने को आत्मानुभूति कैसे प्राप्त हो, क्या उसका विषय है, क्या साधन है, तो जब तक हमारी साधन और विषय की भूल नहीं निकलेगी तब तक हमको इस स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने ये जो न्यायदीप का है ग्रंथ कहना चाहिए धर्मभूषण यति का, उसको एक नया आध्यात्मिक रूप देकर अध्यात्म न्यायदीप का नामक सचित्र चार्टों के द्वारा हिंदी भावानुवाद रूप टीका लिखी, और जो अपना तत्वार्थ सूत्र का महा सिद्धांत सूत्र है प्रमाण नहीं अधिगमा, यानी जिसमें कहा गया है कि ये प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम होता है तत्वार्थों का, तो इस सूत्र के ऊपर उन्होंने एक बहुत बढ़िया चार्ट बनाया जो हम आप पढ़े लिखे लोग ऐसे ग्लेंस इमीडिएटली समझ सकते हैं और उससे हमको प्रमाण क्या नय क्या बात समझ में आती है। जो समय सार में भी गुरुदेव श्री कई जगह बोलते हैं अन्यथानोत्पत्ति लक्षण है और ये अनेकांत हेत्वाभास है, तो ये जो शब्द आते हैं इनका सही जानकारी इनकी अपने को जैन न्याय ग्रंथों से मिलती है। अभी तक संक्षेप में ये समझ लीजिए कि हम आत्मार्थी बंधुओं के लिए ये बहुत उपयोगी है जैन न्याय का जानना समझना। इस प्रकार से संक्षेप में मैंने आपको जैन न्याय का इतिहास बतलाया।
पंडित जी, ये आपने हमें बहुत खुशी हुई आपने इतना अच्छी तरह से ये इतिहास समझाया, पर ये जैन न्याय क्या है?
अच्छा, जैन न्याय क्या है उसके बारे में सुनिए कि जिस साधन से निश्चित और निर्वाध वस्तु तत्व का ज्ञान होता है और वह साधन स्वयं अपना ही प्रमाण नये रूप श्रुत ज्ञान होता है, अन्य का नहीं, अपने पास साधन मौजूद है श्रुत ज्ञान, उसके द्वारा हम स्वयं का निर्णय कर सकते हैं। जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है बहन, जैन न्याय में हमें सत्य असत्य का खड़े खोटे की परीक्षा करना सिखाया जाता है। सभी मत मजहब वाले दुनिया में अपने अपने मत को सच्चा और अन्य मत को झूठा कहते हैं, तो सच्चे झूठे का निर्णय करने का उपाय हमें जैन न्याय में सीखने को मिलता है, उससे हम ठगाए नहीं जाए और इसलिए जैन न्याय पढ़ना जरूरी है। इस प्रकार स्वर्ण को भली भांति तपा कर काट कर कसौटी पर कस कर ही ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार जैन न्याय हमें लक्षण दृष्टि से ही वस्तु तत्व का ग्रहण करना सिखा देता है। प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय बिना उसका स्वरूप लक्षण संधि सच्चा नहीं होता, तो जैन न्याय हमें लक्षण का भी लक्षण बतलाता है, डिफाइन द डेफिनेशन, और वो जैन न्याय कहता है लक्षण ऐसा होता है वस्तु का जो अनादि अनंत वही मिलता है, ऐसा नहीं है कि देश काल परिवर्तन से वस्तु का लक्षण बदला जाए। तो जैन न्याय से जो अधिगम जन पदार्थों को जानने को उपाय कही गए और वो इसमें बतलाए जाते हैं, तो जैन न्याय के अंतर्गत आप समझिए कि संक्षेप में इतना ही है कि हम जो ज्ञान अपने पास है वो तर्क से अनुमान से युक्तियों से और परोक्ष पदार्थों की सिद्धि और निर्णय कर सकता है। आत्मा दिखाई तो देता नहीं और बहुत सारे पदार्थ नहीं दिखाई देते, तो हम तर्क न्याय अनुमान प्रमाण से जान सकते हैं, सर्वज्ञ की भी सिद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से इस जैन न्याय की बहुत उपयोगिता है। नी प्लस आय से न्याय बना, न्याय बराबर नी प्लस आय, नी माने की दृष्टि से देखें तो निश्चय न्याय से और आय माने आत्मगर्भ को जानना, आय गत धातु से बनता है इन गत धातु इसमें, तो इस प्रकार से जो गत्यार्थक धातु होते हैं सब ज्ञानार्थक होते हैं। और दूसरा व्यक्त किया जाता है न्याय निश्चय ग्रंथ में आता है, नियते अनेन इति ही नीति क्रिया करणम न्याय उच्यते, जिसके द्वारा निश्चय किया जाए ऐसी नीति क्रिया का करना न्याय कहलाता है। तो इस प्रकार से संक्षेप में ये न्याय क्या वस्तु है आपको मैंने बताया, ये अपना शुद्ध ज्ञान साधन का सदुपयोग करना सिखाता है और उससे स्वानुभव का मार्ग अपने को प्रशस्त होता है। इतना मैं समझता हूँ आपको न्याय की, जय न्याय की बात समझ में आई होगी। ऐसे तो विस्तार से बहुत चीजें हैं, न्याय की चर्चा कोई लोक व्यवहार की प्रसिद्धि मात्र के लिए नहीं है, यह आत्म प्रसिद्धि के लिए की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विरोधी नाना प्रकार की युक्तियां जिसमें कौन प्रबल युक्ति है और कौन निर्बल युक्ति है ऐसा निर्णय लेने की क्षमता अपने ज्ञान में आ जाती है, यानी ये परीक्षा करना सिखा देता है सच्चे झूठे की। इसलिए जैन न्याय बहुत उत्कृष्ट है और उसको अपने को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए। हाँ जी
बहुत बढ़िया
पंडित जी, अभी आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि जैन न्याय क्या है, लेकिन यहाँ प्रश्न में मुझे ये होता है कि हम सभी जीवों का मूल प्रयोजन तो दुखों से छूटना ही है और सुखी होना है, तो फिर क्या जैन न्याय पढ़ने से हम ये दुखों से छूट सकते हैं या इन दुखों से छूटा जा सकता है?
बहुत बढ़िया प्रश्न बहन जी आपका, आपका कहना है पूछना है कि हम सब जीवों का मूल प्रयोजन तो दुखों से छूटना है। चटाला में भी कहते हैं जीत रुवन में जीवन सुख चाहे दुख में भय बन, तो ये जैन न्याय पढ़ने से कैसे हम दुखों से छूट सकते हैं? इसके लिए आप समझिए कि जीव के दुखों का मूल कारण एक अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। जीव के दुखों का मूल कारण एक अज्ञान मिथ्या ज्ञान ही है, इसलिए दुख निवृत्ति और सच्चे सुख की प्राप्ति का मूल कारण उपाय भी एक ज्ञान सम्यक ज्ञानी है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा न्यायाधिकरण सूत्र दिया है, सच्चे ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान बिना समीचीन तत्व ज्ञान के नहीं होता, पहले सच्चा तत्व ज्ञान हो प्रयोजनभूत तत्वों का और फिर समीचीन तत्व ज्ञान भी बिना जैन न्याय पढ़े समझे नहीं हो सकता, क्योंकि जो पदार्थों को जानने के उपाय कहे हैं लक्षण प्रमाण नये निक्षेप उनको समझे बिना हम अन्यथा ग्रहण करेंगे तो सच्चा तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, तो इसलिए जैन न्याय को समझना अत्यंत आवश्यक है। वैसे भी हमारे भारत देश में न्याय विज्ञान का प्रचलन बहुत प्राचीन काल से रहा है और इसका महत्व भी बहुत अच्छे देखे। हमने तो ऐसा भी बहुत सुना है करीब 800 वर्ष पहले कि हिंदुस्तान में अम्बाला में शास्त्रार्थ होता था जैन विद्वानों का, और एक आर्य समाजी महाविद्वान थे, वो जैन धर्म स्वीकार करके क्षुल्लक कर्मानंद बन गए थे। उन्होंने जब देखा कि जैन न्याय में ये नहीं है कि उसमें कोई पक्ष विपक्ष हो, यहाँ तो निष्पक्ष होके वस्तु के स्वरूप को पहचाना जाता है, समझा जाता है, और इसलिए एक महाकवि कौटिल्य ने कहा है, प्रदीपा सर्व विद्यानां उपाया सर्व कर्मणां आश्रया सर्व धर्मणां शाश्वत मानवीच की मता। मानवीच की माने न्याय विद्या, न्याय विद्या शाश्वत काल से सर्व विद्याओं का प्रदीप यानी दीपक, सर्व कर्मों का उपाय, सर्व कौन माने जो भी लौकिक न्याय नीति के कर्म है अथवा धर्म कार्यों का उपाय, और सर्व धर्मों का आश्रय मानी गई है न्याय विद्या। इसलिए न्याय विद्या को परीक्षा, अनवीक्षा, युक्ति, तर्क विद्या, समीक्षा, हेतु विद्या, वाद विद्या, न्याय नीति, विचार चिंतन इत्यादि अनेक नामों से पुकारा जाता है। इसलिए ये जो आपका है, इस प्रकार हम सच्चे उपाय को प्राप्त कर वास्तव में अज्ञान को मिटाकर सुखी होने का उपाय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संसार में दुख का कारण एकमात्र अज्ञान को का है और अज्ञान से जड़ भ्रम है। तो इस प्रकार से जैन न्याय पढ़ना बहुत जरूरी है, दुखों का निवारण उसके समझे बिना नहीं हो सकता। और आपको ये विदित हो कि आज से करीब 100 वर्ष पहले पंडित गोपाल दास जी भैया हो गए, और वो उन्होंने जब जैन सिद्धांत सूत्र एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, उसमें उन्होंने 5वें अध्याय में जैन न्याय का चित्र रखा और उसमें कहा पदार्थों को जानने को उपाय क्या है। तो उन्होंने कहा कि उसमें लक्षण और लक्षणाभास, लक्षण क्या है, लक्षणाभास क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमाणाभास क्या है, और इसी तरह से प्रमाण नए और नयाभास क्या है, और निक्षेपाभास क्या है, सब चीजों का दिग्दर्शन कराया जो हम अल्प बुद्धि भी समझ सकते हैं और उससे अपने अनादिकालीन दुख दारिद्र को मिटा सकते हैं और अपने स्वान व प्राप्त कर मोक्ष मार्ग को पा सकते हैं। इतना ही मेरी।
परंतु पंडित जी, हम तो अल्प ज्ञानी है, तो फिर हम गलत क्या है, सच्चा क्या है, ऐसे कैसे परीक्षा कर सकते हैं? और हमारे अगर इसमें परीक्षा होने में भूल भी हो जावे तो फिर हम क्या करें?
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि भाई हम तो अल्पज्ञ जन है, हम गलत क्या सही क्या, हम कैसे परीक्षा कर सकते हैं? और परीक्षा करने बैठे और गलत परीक्षा हो गई तो इसका जवाब सुनिए ये है। यदि व्यक्ति यानी हम आप स्वार्थ व पक्षपात से रहित होकर एक वैज्ञानिक की तरह जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, बल्कि यहाँ तक के धर्म ग्रंथों से भी ना बंधता हुआ वस्तु के स्वरूप को पढ़ता है निष्पक्ष होकर, अनप्रेजिडिस्ट अनवायस्ड होकर, तो निष्पक्ष होकर सच्ची विधि से परीक्षा करे तो वो परीक्षा सच्ची कर सकता है। हम अल्पज्ञ जन भी सच्ची परीक्षा अवश्य कर सकते हैं। देखो कहीं बाजार में कोई माटली मिट्टी का बर्तन लेने जाते हैं तो अपन उसको ऐसे नहीं ले लेते, ठोक बजा के लेते हैं, क्या बराबर है कि नहीं? तो इसी तरह से यहाँ पर टूडुमल जी साहब ने भी कहा है, टूडुमल जी साहब ने कहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि भाई सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से और प्रमाण छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची ही परीक्षा होती है। यहाँ पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा न करे तो वहाँ अन्यथा परीक्षा हो सकती है। पक्षपात रहित होकर के वस्तु स्वरूप की परीक्षा करना चाहिए, तो इससे अपने से अन्यथा परीक्षा नहीं होगी और गलत सही का निर्णय करने की क्षमता हमारे आपके सूत्र ज्ञान में है, ये बात आप पक्की जानिए, इसमें शंका नहीं करना चाहिए।
ठीक बात है
पंडित जी। जब जिनेन्द्र भगवान वितरागी सर्वज्ञ है, अन्यथावादी नहीं है, तो फिर हम उनका ही उपदेश ज्योंका त्यों मान लें, फिर परीक्षा किस लिए करें?
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे भगवान जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ हैं और वे तो अन्यथा कथन करते नहीं हैं, तो फिर हमें परीक्षा करने की क्या जरूरत है ना? जिन मत में शंका ना था ऐसा पढ़ते भी हैं। अरे लेकिन ये भी है कि बिन जाने से दोष गुणन को कैसे सजिए गई है, तो सुनिए इसका जवाब ये है, परीक्षा किए बिना हम आज्ञा प्रधानी होकर बनकर ये तो मान सकते हैं कि जिन देव ने ऐसा ही कहा है तो सत्य ही है, परंतु उनका भाव अपने को भाषित नहीं होगा और भाव भाषित हुए बिना निर्मल श्रद्धा नहीं हो सकता, तथा जिसका भाव भाषित हुआ होगा वह परीक्षा प्रधानी उसे अन्य किसी भी प्रकार से अन्यथा नहीं मानेगा। जैन न्याय ग्रंथों में आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है, तथा प्रयोजनभूत तत्वों की परीक्षा एवं हे उपाधेय हे तत्वों की परीक्षा निर्णय अपना हेतु तर्क अनुमान आगम युक्ति से अवश्य करना चाहिए। प्रमाण नहीं रहेगा मा तत्व सूत्र में कहा ही है, तत्वों का निश्चय निर्णय प्रमाण व नए ज्ञान इन साधनों से होता है। अपने ज्ञान पर्याय का ही नाम प्रमाण है, नए है, निश्चय से यानी अपना ज्ञान उस वस्तु स्वरूप को कैसे जानता है, और प्रमाण व नए को युक्ति का है, प्रमाण नए को युक्ति। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम इंजीनियरिंग में एक टॉपिक पढ़ते थे कॉस्ट एनालिसिस वैल्यू एनालिसिस। एक नौकर को बाजार भेजा जा अच्छी सब्जी लेके आ, तो उसने अच्छी कार समझा कि सेठ जी खुश हो जाए तो थर्ड क्लास सब्जी ले आए एक रुपए की दो दो किलो, और वो उसमें आधी से ज्यादा बेकार थी भी, तो उसने क्या किया, उसने अच्छी का अर्थ क्या समझा, क्वांटिटी ना कि क्वालिटी। तो हम उसने कॉस्ट देखी, वैल्यू एनालिसिस नहीं किया। तो जैन दर्शन भाव भाषण कराने के लिए कहता है तुम्हारे ज्ञान में क्षमता है, आचार्य वन तो तुम्हें लॉजिक से बतलाएंगे लेकिन तुम्हें अपना सिद्ध अपना स्वरूप समझना पड़ेगा। इंग्लिश में भी एक कहावत है कि फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियंस, फैक्ट्स प्रोड्यूस कंक्लूजंस, ओपिनियंस प्रोड्यूस आर्गुमेंट्स, सो बी श्योर टू हैव फैक्ट्स सो दैट दे डू नॉट डिसअपीयर व्हेन आस्क्ड व्हाई एंड हाउ। इसलिए ये समझना कि हम आप जिनेंद्र भगवान की भी परीक्षा कर सकते हैं, सभी हम उनके द्वारा कहे हुए तत्वों का यथार्थ निर्णय करके और तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धानी बन सकते हैं।